इप्सिता उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और अपने बालों को कान के पीछे किया। अथर्व इप्सिता के चेहरे की तरफ ही देख रहा था, तभी उसने कहा, क्या तुम फ्री हो? एक्चुअली मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारा फोटोशूट खत्म हो गया है और अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो क्या आज हम कॉफी पर चल सकते हैं? एक्चुअली मैं तुम्हारी सक्सेस और इस खुशी में शामिल होना चाहता था, तो क्या अगर तुम फ्री हो तो हम कॉफी पर चलें? ओह गॉड, फिर से वही सवाल, अब आज कौन सा बहाना बनाएं हम? इप्सिता ने कहा। इप्सिता थोड़ा सोचते हुए बोली, वो एक्चुअली सर क्या है ना, आज हमें थोड़ा अपने पर्सनल काम से बाहर जाना था, हम किसी और दिन चलेंगे कॉफी पर। अथर्व इप्सिता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, पिछले 3 महीने से ही तो मैं ये सुन रहा हूँ, हर बात में पूछता हूँ और तुम्हें कोई ना कोई और ज़रूरी काम होता है उसी दिन। एनीवेज कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपने पर्सनल काम से कहीं जाना है तो चली जाओ। इप्सिता ने अथर्व की ये बात सुनते ही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, थैंक यू सो मच सर। इतना बोलकर इप्सिता जल्दी से मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। अथर्व उसे इस तरह भागते देखकर मुस्कुराते हुए बोला, भाग लो इप्सिता, मैं भी देखता हूँ आखिर कब तक भागोगी, और वैसे भी तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत लड़की को डेट पर ले जाना कोई छोटी बात तो नहीं है, और तुम्हारे लिए तो मैं 3 महीने क्या 3 साल भी इंतज़ार कर लूँगा। वैसे भी आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन तो तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो ही जाओगी, और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इप्सिता के बारे में इतना बोलकर अथर्व वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। उसकी टेबल पर सामने इप्सिता की कवर इमेज वाली कई सारी मैगजीन्स रखी थीं। वो उन मैगजीन्स को उठाकर बहुत ही ध्यान से देखने लगा। अपने हाथ की उंगलियों से इप्सिता की फ़ोटो को इस तरह से छूने लगा जैसे कि वो फ़ोटोज़ को नहीं बल्कि इप्सिता को ही टच कर रहा था। इप्सिता की वो सारी फ़ोटोज़ देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ इप्सिता मीटिंग रूम से बाहर निकली और बाहर आते ही चारों तरफ नज़र घुमाकर नंदिनी और ध्रुव को ढूंढने लगी। उसने थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो नंदिनी अपनी मॉडल का मेकअप करने में बिजी थी और ध्रुव उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। इप्सिता नंदिनी के पास जाकर बोली, नंदिनी कब ख़त्म होगा तुम्हारा काम? नंदिनी ने इप्सिता की तरफ देखा, वो अपने काम में ही बिजी थी। उसने कहा, मैं तो अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, आज काफ़ी ज़्यादा काम है, लेकिन अगर तुम्हारा काम ख़त्म हो गया हो ईशु तो तुम घर चली जाओ। इप्सिता ने जवाब दिया, हमारा काम तो ख़त्म हो गया है और हम सोच रहे थे कि तुम भी अपना काम फिनिश कर लो तो दोनों एक साथ ही चलेंगे। नंदिनी ने अपने सामने बैठी मॉडल के मेकअप को ठीक करते हुए कहा, अरे यार अगर तुम मेरा वेट करोगी तब तो आराम से शाम के 6-7 बज जाएंगे, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं होने वाला। एक काम करो, तुम ये लो कार की चाबी और घर पहुँचो, मैं आ जाऊँगी। इप्सिता ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, तुम्हें अगर लेट होगा तो तुम ही कार से आ जाना, हम अपने लिए कैब बुक कर लेते हैं। नंदिनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे नहीं तुम कार ले जाओ, और वैसे भी जब मेरा काम ख़त्म होगा तो मैं उदय को फ़ोन कर लूँगी, वो आ जाएंगे मुझे लेने, इसी बहाने उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लूँगी। नंदिनी ने जैसे ही ये बात कही इप्सिता उसे छेड़ते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है, वैसे शाम को कार में क्वालिटी टाइम बिताने का क्या मतलब है, तुम दोनों रात में लूडो खेलते हो क्या? इप्सिता के मुंह से ये बात सुनकर नंदिनी बिल्कुल शॉक हो गई, उसे इप्सिता के मुंह से इस तरह की कोई बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। वो उसे घूरते हुए देखने लगी। जिस मॉडल का नंदिनी मेकअप कर रही थी वो भी हंसने लगी। नंदिनी ने मेकअप ब्रश टेबल पर रखा और उसने अपनी असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो उस मॉडल का मेकअप कम्प्लीट करे। नंदिनी भागते हुए इप्सिता के पास आई और इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, पागल हो जाती हो क्या तुम, कहीं पर कुछ भी बोल देती हो। नंदिनी को इस तरह धीमी आवाज में बोलते देखकर इप्सिता ने कहा, अरे यार मजाक कर रहे हैं हम, तुम्हें परेशान करने में अच्छा लगता है हमें, चलो ठीक है लाओ चाबी हम निकल रहे हैं, तुम आराम से अपना काम फिनिश करके भाई के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आना। इतना बोलकर इप्सिता मुस्कुराने लगी और उसने कार की चाबी ली। वो सीधे एजेंसी से बाहर निकलने लगी। इप्सिता को वहां से जाते देखकर नंदिनी ने अपना सर दाएं बाएं हिलाते हुए कहा, ये लड़की इतनी जल्दी इतना चेंज हो जाएगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है उसके लिए, वैसे भी इतने दिनों तक वो अभिमन्यु की वजह से ट्रॉमा में रही और अब वो खुद को इतना चेंज कर रही है तो ये हम सबके लिए और उसके लिए भी अच्छा ही है। इतना बोलकर नंदिनी मुस्कुराने लगी और वापस अपने काम में लग गई। वहीं इप्सिता सीधे एजेंसी से बाहर निकली और कार ड्राइव करना शुरू किया। वो रास्ते में थोड़ी ही दूर पहुंची थी। इप्सिता के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, आई थिंक इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले भाई से एक बार इस बारे में बात करनी चाहिए और उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट करना सही है तो ही हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो हम साफ साफ मना कर देंगे, लेकिन हमें लगता नहीं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मना करने से हमें कोई भी प्रॉफिट होने वाला है, और वैसे भी 3 साल तक एक तरह से देखा जाए तो हमें काफ़ी कुछ और सीखने को भी मिल जाएगा। इप्सिता ड्राइव कर ही रही थी तभी उसने कहा, अरे हाँ आंटी ने कहा था कि आज शाम को सेलिब्रेशन होगा, तो एक काम करते हैं
रास्ते में जो फेमस रॉयल बेकरी पड़ती है वहाँ से अपना और नंदिनी का फेवरेट केक ले लेंगे, तो शाम को सबका मुंह मीठा करने के लिए कुछ होगा और केक तो सबको ही पसंद है। इप्सिता ये सब सोचते हुए बेकरी की तरफ जाने के लिए ड्राइव कर ही रही थी कि तभी अचानक से इप्सिता की कार चलते चलते रुक गई। इप्सिता ने कार की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हुआ, कार अचानक से कैसे बंद हो गई? इप्सिता ने 3-4 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इप्सिता ने आसपास देखा और उसने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कहा, वाओ व्हाट अ ग्रेट टाइमिंग, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बीच सड़क पर ही इस कार को भी बंद होना था, अब हम क्या करें, यहाँ पर तो आसपास हमें कोई मैकेनिक भी नहीं होगा जो हम उससे हेल्प ले लें। इप्सिता इतना बोलकर कार से बाहर निकली और उसने देखा कार के बोनट के पास से हल्का धुआं निकल रहा था। इप्सिता ने जैसे ही कार का बोनट छुआ तो उसे समझ में आया कि वो काफी ज्यादा गर्म हो गया था। इप्सिता ने तुरंत अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, ओ गॉड, ये तो काफी ज्यादा हीट हो रहा है, शायद इसी वजह से कार बंद हो गई है, आई थिंक हमें किसी मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर इप्सिता ने कार के अंदर से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसने देखा कि उसके मोबाइल फोन में बैटरी ही नहीं थी। इप्सिता ने अपना फोन वापस पैसेंजर सीट पर फेंकते हुए कहा, वाह, इस फोन को भी अभी खराब होना था, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही सिर पर आकर खड़ी हो जाती हैं। इप्सिता इतना बोलकर वहीं कार के बाहर ही आकर खड़ी हो गई। उसने इधर उधर देखा, उसे ऐसा कोई भी नजर नहीं आ रहा था जिससे वो मदद मांग सके। इप्सिता ने अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा, क्या करें अब, हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि कार में क्या हो गया और ऊपर से हमारा गला भी इतना सूख रहा है। इप्सिता ने इतना बोलकर कार के अंदर रखी पानी की बोतल को उठाया और बोतल बाहर निकालकर वहीं कार के पास ही खड़ी होकर पानी पीने लगी।
तभी पता नहीं इप्सिता के दिमाग में क्या आया कि इप्सिता ने पानी पीने के बाद बोतल का बचा हुआ पानी कार की बोनट खोलकर अंदर डाल दिया। वो काफी देर तक वहीं पर खड़ी होकर वेट कर रही थी, लेकिन जब उसे वहां पर कोई भी मदद करने के लिए नहीं मिला तो इप्सिता दोबारा से अपनी कार में आकर बैठ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, चलो एक बार फिर से स्टार्ट करके देखते हैं, शायद स्टार्ट हो जाए। इप्सिता ने अपनी फिंगर क्रॉस्ड की और कार को स्टार्ट करने के लिए उसने कार की चाबी को ट्विस्ट किया। पहली बार में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में जैसे ही इप्सिता ने कार की चाबी को घुमाई तो कार स्टार्ट हो गई। इप्सिता खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ये तो स्टार्ट हो गई, चलो अच्छी बात है। इतना बोलकर इप्सिता ने कार स्टार्ट की और सीधे रोड की तरफ आई। इप्सिता बेकरी पहुंचने ही वाली थी कि फिर से उसकी कार बंद हो गई। इप्सिता ने इरिटेट होते हुए कहा, पता नहीं क्या हो रहा है इस कार में, आखिर प्रॉब्लम क्या है, हम आज ही घर जाकर भाई से बोल देंगे कि प्लीज इस कार की सर्विस करवा दें। इप्सिता कार से बाहर उतरी और वो कार के बोनट के पास आकर फिर से खड़ी हुई। उसने कार को घूरते हुए कहा, आज से पहले तो तुमने कभी भी इतने नखरे नहीं दिखाए थे, तो फिर आज क्या हो गया तुम्हें, क्यों आज इतने नखरे दिखा रही हो? इप्सिता कार से ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहां पर एक आदमी आया। उसने नॉर्मल जीन्स और व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, उसकी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड थीं और उसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था। वो इप्सिता के पास आकर काफी भारी आवाज में बोला, एक्सक्यूज मी मिस, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या आपकी कार में? आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इप्सिता ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन आप कौन हैं? उस अनजान आदमी ने इप्सिता का सवाल पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, हमने देखा कि आप यहाँ पर अपनी कार रोक कर खड़ी हैं और थोड़ी परेशान लग रही हैं, आपकी कार में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? इप्सिता ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं हमारी कार को क्या हो गया है, अचानक से चलते चलते रुक रही है। उस आदमी ने सीधे ही कहा, आपको कहाँ जाना है, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। इप्सिता उस आदमी को घूरते हुए देखने लगी क्योंकि उस आदमी ने ब्लैक कलर का मास्क और ब्लैक कलर के ही सनग्लासेस लगाए हुए थे। वो खुद ही इप्सिता से बात करने के लिए आया था। इप्सिता ने उसे फिर से सिर से लेकर पांव तक ऑब्जर्व करते हुए अपने मन में कहा, ये है कौन और इस तरह से बिना मांगे ही हमारी मदद के लिए क्यों आ रहा है, और कॉन्फिडेंस तो देखो, सीधे ही अपने साथ आने के लिए बोल रहा है। क्रमशः